जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक संख्या 38 पर 29 नवंबर 2016 को चंडीगढ़ में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। कल पंचकुला में हमने आपको चौथे स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाया था, जिसमें सनत कुमार उपदेश दे रहे थे कि इस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम आपको भगवद्गीता के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें आप किसकी कथा पढ़ रहे हो? अर्जुन की कथा। समाज में की कथा से परिचित हो तो समय का भाव है, हम काफी लेट शुरू कर रहे हैं। अक्सर 9:45 बजे लेक्चर खत्म होता है, यहाँ 9:45 बजे शुरू हो रहा है, तो हम सीधा अनुवाद पढ़ेंगे।
अनुवाद। चूंकि मैंने भक्तों के संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसीलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसीलिए मैं अब पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूं। अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। इस श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि मनुष्य किस तरह भव बंधन का शिकार हो जाता है। इसका शुभारंभ आत्मा के रूप में शरीर की गलत पहचान से होता है, इसीलिए भगवद गीता का शुभारंभ इस आध्यात्मिक शिक्षा से होता है कि व्यक्ति शरीर नहीं है अपितु वह शरीर के भीतर है। यह चेतना तभी संभव है जब वह एकमात्र कृष्ण के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और अपने को सदैव भक्तों की संगति में रखे। यही सफलता का रहस्य है। इसीलिए हम बल देते हैं कि मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करे और अपने को इस भौतिक जगत के कलमोसों से विशेषतया अवैध मैथुन मांसाहार नशा तथा जुआ की काम इच्छाओं के कलमोसों से मुक्त रखे। मनुष्य को संकल्प पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करने का व्रत लेना चाहिए और इस तरह संसार की कष्टमय दशा से बचना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है कि देहात्म बुद्धि से मुक्त हुआ जाए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। सबने सुना ध्यान से, नमः मिथि देहादो एत्वा मिथ्याय अर्थात धीरवते दासे मनो भगवती शुद्ध नाम तत् कीर्तना देवी। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसका उच्चारण आज ही मिल कर रहे हैं। कल हम भगवत की महिमा की चर्चा कर रहे थे और भागवतम में शुरू से अंत तक शुद्ध भक्ति का संदेश दिया जाता है। और अनेक कथाएं हैं जिनके द्वारा हमें भक्ति का संदेश मिल रहा है। उदाहरण के लिए छठे स्कंद में आप आजीवन की कथा पढ़ते हो। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से एक प्रश्न पूछा था, अनेक प्रश्न पूछे, उनमें एक प्रश्न ये था, ये बताओ किस प्रकार से लोग नरक में पहुंचने से बच सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में नरकों का वर्णन है और स्वर्गों का वर्णन है। कौन से स्कंद में प्राप्त होता है? पांचवें स्कंद में। जो भगवान के भक्त हैं वो सबको सुखी देखना चाहते हैं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, ये बताओ ये जो पाप की इच्छा रहती है हमारे हृदय में, इससे हम कैसे बचें? और उन्होंने आगे एक उदाहरण दिया, एक हाथी तालाब में स्नान करता है, उसका शरीर साफ हो जाता है, पर तालाब से निकलते ही फिर वो बैठता है खेती मिट्टी में, वे शरीर गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या लाभ, पाप करो पछताओ, पाप करो पछताओ। ये शिक्षा दीजिए कि जो पाप की इच्छा है हृदय से, ये दूर हो जाए। सच बात है, आपकी भी ये इच्छा है कि नहीं? नहीं है इच्छा तो फिर आपको आज उनकी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो ये था परीक्षित महाराज का प्रश्न। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हमारे प्राचीन पुराणों में एक कथा प्राप्त होती है, और ये उन्होंने कहा 5000 साल पूर्व। तो दूसरे शब्दों में ये जो आर्यमल की कथा है, अंदाजा से कम 7-8 हजार साल पुरानी कथा है, और भगवतम की कृपा से आपको इसका ज्ञान आज प्राप्त हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्राचीन पुराणों में एक कथा है कि एक समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आजमल, जिसका जन्म बड़े धार्मिक वातावरण में हुआ था। पत्नी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे, माँ बाप ने छोटी आयु से ही बच्चे को आजमल को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। ये आजमल एक दिन जंगल में गया था भगवान की पूजा के लिए, फूल लाने के लिए और फल लाने के लिए। ये नहीं कि आजमल कोई सिनेमा देखने गया था, गया था बड़े उत्तम कार्य के भाव के साथ, भगवान की पूजा के लिए फूल लाना फल लाना। तो लौटते समय उसने देखा एक वैश्य अपने प्रेमी के साथ, दोनों बड़े नशे में थे, गले लगा रहे थे एक दूसरे को, और इस घटना के प्रति वो आकर्षित हो गए। और लंबी कथा है, संक्षेप में पहले उन्होंने उस वैश्य को नौकरानी के रूप में रखा घर में, फिर उसे विवाह किया, अपनी धार्मिक पत्नी को त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया, पिता द्वारा जो संपत्ति प्राप्त हुई थी उसे भी फूंक दिया, खत्म कर दिया, और इस वैश्य को के साथ वो रहने लगा, और उसके द्वारा 10 बच्चे भी हुए, जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? इस घटना से हमें क्या संदेश मिलता है? अगर हम मन को बंधु नहीं बनाएंगे तो ये मन आपको नरक में पहुंचा देगा। इस विषय पर गीता के छठे अध्याय में बड़े गहराई से चर्चा होती है और ध्यान योग में अध्याय में भगवान कहते हैं मन को मन बंधु बनाओ शत्रु नहीं। मन बंधु जब माना जाता है जब मन आध्यात्मिक आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, और मन शत्रु जब माना जाता है जब मन शास्त्र के विपरीत कार्य का चिंतन कर रहा है। तो आज बल्कि क्या समस्या थी, उसने वैश्य को देखा प्रेमी के साथ, खूबसूरत थी वैश्य, उसके शरीर के प्रति आकर्षित हुआ और क्योंकि इसी भाव का चिंतन वो कर रहा था आध्यात्मिक भाव के बजाय, उसका आचरण भी बहुत ही जल्द बिगड़ गया और वो बुरे कामों में लीन हो गया। और इस वैश्य पत्नी को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के पाप के कार्य उसे करने पड़े। हम सब के कार्यों के एक साक्षी हैं परम भगवान। अज्ञान व्यक्ति सोचते हैं कौन है कि साक्षी, ये साधु लोग कहते हैं अंत में परिणाम होगा, तो कौन है साक्षी, कोई देख रहा तो नहीं हम क्या कर रहे हैं, पर हमारे अनेक साक्षी हैं, सूर्य चंद्रमा तारे लाखों साक्षी हैं, देवता और परम भगवान परमात्मा के रूप में। तो यमराज जी हैं मृत्यु के देवता, जैसे आपके चंडीगढ़ में कोई ना कोई व्यक्ति पुलिस कमिश्नर होगा, उसी प्रकार मृत्यु के देवता हैं यमराज जी। यमराज जी के पास सबका अकाउंट है। आजकल भारत में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कैशलेस सोसाइटी बनाना, अब सब बैंक अकाउंट खोलो। तो यमराज जी के पास सबका खाता है, सबका, भक्तों का खाता नहीं रखते, भक्तों का खाता भगवान खुद रखते हैं, बाकी सबका खाता यमराज जी रखते हैं। और भौतिक संसार में तो कई बार कंप्यूटर वायरस हो जाता है, आपके एटीएम की मशीन भी फेल हो जाती है, पर यमराज का कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता। तो यमराज ने देखा कि यह अजमेर अनेक प्रकार के पाप का कार्य कर रहा है, इसे सजा भोगनी चाहिए। तो यमराज ने 3 यामदूतों को भेजा अजमेर को नरक मिलाने के लिए सजा भोगने में। 3 क्यों, क्योंकि 3 साधन हैं जिनके द्वारा, इसको हटाओ, जिनके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो या भगवान को भूल सकते हो। क्या है ये 3 साधन? वाणी, मन, इंद्रिय। मन के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हो, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हो, जैसे दामोदर कार्तिक के महीने में आप लोग दामोदर लीला का स्मरण कर रहे थे, ऐसे आप सारा साल भगवान के अनेक लीलाओं का स्मरण कर सकते हो। भगवान का गीता का जो उपदेश है, 10 तारीख को गीता जयंती मनाई जाएगी, तो गीता का जो संदेश है उसका स्मरण कीजिए। पर हम अक्सर क्या करते हैं, मन द्वारा यही सोचते रहते हैं आज ये है कल ये होना चाहिए, इतना मैंने प्राप्त कर लिया है पर ये बस नहीं है और प्राप्त करना चाहिए। हम यही सोचते हैं अगर हमें भी इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मिल जाए, अच्छी मोटर मिल जाए, सब मिल जाए, तो हम सुखी होंगे। तो मन में अक्सर हमारे मन में बहुत एक भाव रहते हैं, सच है झूठ। और अगर आप आध्यात्मिक भाव अनुकूल करने का प्रयास भी करो, बहुत ही जल्द मन भटकने लगता है। हाँ, चंचलाई मना कृष्णा, अर्जुन ने क्या कहा, हे कृष्णा वायु को वश में लाना ज्यादा सरल है मन की तुलना में। तो आर्जुन ने देखा तीन भयंकर रूपी यमदूत आ रहे हैं उसे नरक में ले जाने के लिए। जैसे आप अगर किसी भयंकर रूपी आदमी को देखो तो डर जाते हो, तो आज मिल डर गया तीन यमदूतों को देखकर। जब हम डर जाएं तो क्या करते हैं हम? भगवान की सुरक्षा के की भीख मांगते हैं। राजमी ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम लिया जिसका नाम था, वैसे तो हालांकि आजमेर पाप के कार्य में जुड़ गए थे, पर दिन में हजारों बार नारायण का नाम ले रहे थे। प्राचीन समय में ये व्यवहार था कि हम बच्चों को भगवान के नाम दे देते, और ये रिवाज क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म में भी है। अब ईसाइयों में देखोगे नाम जॉन, पीटर, मैथ्यू, मेरी, कैथरीन, ये सब बाइबल के नाम है। मुसलमानों में अभी आप देखते हो नाम कुरान के हैं, तो हिंदुओं में भी ये रिवाज था, आज ये रिवाज है। कई बार लोग आते हैं हमारे पास, स्वामी जी नाम दीजिए बेटे को बेटी को, तो हम नाम देते हैं, ये नाम नहीं कोई और कोई और देते हैं, कहते ये नहीं कोई और। विराद में क्या समझ में आता है, इनको चाहिए कोई स्वीटी टीनी सनी ऐसा नाम। फिर हमें कहना पड़ता है आप गलत पते पर आ गए हो क्योंकि अगर आध्यात्मिक नाम चाहिए तो यहाँ आना चाहिए। और जो भक्त है माँ बाप अपने बच्चों को सदा भगवान के नाम देना चाहते हैं। तो आज मेल ये जाने बिना कि उन्हें आध्यात्मिक लाभ पहुंच रहा है नारायण का नाम ले रहे थे सारा दिन, क्योंकि जब से बहुत छोटे बेटे के प्रति बहुत गहरा आकर्षण था। एक मिनट के लिए भी अगर नारायण नजर से दूर होता था तो कहते नारायण तुम कहाँ हो, तो आजमी ने नारायण शब्द को पुकारा था अपने छोटे बेटे के सहयोग के लिए जो पास में ही खेल रहा था। तो जैसे ही उन्होंने नारायण शब्द को इतनी श्रद्धा से पुकारा कि तुरंत भगवान ने अपने विष्णु दूतों को भेजा आजमीर की सुरक्षा के लिए, और फिर विष्णु दूतों यमदूतों का वार्तालाप हुआ जिसमें आजमीर समझ गए किस प्रकार वो बुरी संगत में गिर गए थे। साधु की संगत से हम समझ पाते हैं क्या होना चाहिए हमारा कर्तव्य, इसलिए इस श्लोक में भी कहा गया है साधु संगत का परमहंस का गुणगान किया गया है। तो विष्णु दूतों की संगत में रहने से आजमिल समझ गए किस प्रकार वो बुरी संगत में गिर गए थे, किस प्रकार उन्होंने अपनी संस्कृति को त्यागा, और उन्होंने निर्णय कर लिया क्या मुझे जीवन सुधारना है। तो आजमिल क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, क्योंकि भक्तों की संगति से भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरे हृदय अब शुद्ध बन गया है। तो सबसे पहले इस श्लोक में आर्जुमिल ये कह रहे हैं उन्होंने भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन किया है। भगवान के जो नाम हैं पवित्र हैं, नाम अचिंतामणि कृष्णस चेतन रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्नात्म नाम नामिना, भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। आप सबका तो भारत भूमि में जन्म हुआ है जहाँ बचपन से ही आप हरि नाम की महिमा सुनते आ रहे हो, पर विदेशों में जहाँ की ये गहरा ज्ञान नहीं है लोगों के पास, कई बार लोग दोष लगाते हैं कहते हैं तुमने तो ब्रेन वॉश कर दिया लोगों को, कैसे संभव है एक ही नाम का उच्चारण दिन रात करते हो। हम कर पाते हैं क्योंकि भगवान के नाम अभिन्न है और भगवान के नाम पवित्र हैं। भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, चाहे आपके हृदय में कितनी भी मैल क्यों ना हो, आप इस मैल को दूर कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण रहे आनिया, यही राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में 520 साल पूर्व। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिए हैं जिनका उच्चारण हम इस कान के हर मंदिर में करते हैं सुबह। और सबसे पहले श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, चेत दर्पण अग्नि निर्माण। भगवान के नामों के उच्चारण का एक लाभ यह है कि हमारे हृदय में जो मैल है वो दूर हो जाती है। मैल का अर्थ है भौतिक भाव, भौतिक आकर्षण को अगर आप दूर करना चाहते हो, ये है उपाय। तो भगवान के जो नाम हैं बिल्कुल पवित्र हैं, और भगवान के नाम की महिमा आपको कैसे प्राप्त होती है, साधु संगत के द्वारा। जैसे कि अगर मैं आप सबसे पूछूं आपका हरि नाम में से परिचय कैसे हुआ, आप कहोगे किसी ने ग्रंथ दिया था या किसी ने आपको निमंत्रण दिया और आप भक्ति संगत में आए। और विदेशों में आज विश्व के कोने कोने में हरि नाम का उच्चारण हो रहा है, और लोगों का परिचय कैसे हुआ, साधु संगत के माध्यम से। या ग्रंथ साधु या भक्त साधु, जैसे कि गीता जयंती के उपलक्ष हम प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में क्या बांटने के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें दिव्य ज्ञान है, तो ज्ञान को पढ़ेंगे अपने जीवन को सुधारेंगे। कई उदाहरण हैं कि लोगों ने गीता ली थी 10 साल पहले, किसी ने 10 साल गीता खोली भी नहीं, 10 साल बाद किसने खोला और संदेश को स्वीकार किया। तो एक है ग्रंथ साधु, दूसरा है भक्त साधु, दोनों की आवश्यकता है। तो अर्जमील भूल गया था हरि नाम की महिमा बुरी संगत में आकर, और फिर जब अर्जमील को विष्णु दूतों की संगत मिली तो विष्णु दूतों की संगत में रहते ही मिलते ही समझ गए, हाँ मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है, अब मुझे सुधारने दो। तो एक प्रार्थना का उच्चारण हम करते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ध्यान अंजन शलाक्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री ज्ञान। हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, आप सबको जन्म अज्ञानता में हुआ था, आप कहे नहीं स्वामी जी हम तो बड़े ऊंची ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया था, पर शास्त्र में कहा गया है कलो शूद्र संभवा, कलयुग में हम सब लगभग क्या हैं, भारत में हम लड़ते रहते हैं कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति, ठीक है। एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा भारत एक देश है जहाँ सब लड़ते हैं रिश्वत देते हैं नीची जाति में जन्म दिखाने के लिए, क्योंकि नीची जाति में जन्म दिखाओगे तो ज्यादा नौकरी की सुविधा है, पर कल कम नंबर में पास हो जाओगे वगैरह। पर ध्यान से देखा जाए हम सब नीची जाति के हैं, कलो शुद्ध सब। तो अगर कोई कहे वो ब्राह्मण है, कोई कहे हम पैदाइशी ब्राह्मण ये मूलपन है, तो वो ज्ञान थे मिलना से हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, पर हम किसी साधु को मिले और उसके द्वारा अज्ञानता दूर हुई। जैसे अंधेरापन दूर कैसे होता है, कैसे होश में, इस प्रकार इसी संदेश के ऊपर चैतन्य चैतन्यमृत में कृष्णदास काव्यराज कहते हैं, कृष्ण सूर्य समा माया हाया निकारा, यहाँ कृष्ण माया निकारा, जहाँ कृष्ण है वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा, जिस प्रकार जहां रोशनी है वहां अंधेरापन दिखता है नहीं। तो इसलिए हमें सदा कृष्ण के साथ रहना चाहिए, और इस कलयुग में संभव है उनके नामों के उच्चारण के द्वारा। तो आज ही मैंने कहा क्या कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके, जो कि उन्हें साधुओं की संगत, विष्णु दूतों की संगत में रहकर प्राप्त हुआ, तो हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि हम सदा भक्तों की संगत में रहें। भक्तों की संगत रहने का भाव रखोगे तो भगवान वो सुविधा देंगे, और प्रभुपाद की कृपा से कोने कोने में इस्कॉन के केंद्र हैं, विश्व के किसी कोने में चले जाओ, साधु संगत में रहोगे तो हमेशा हरि नाम की महिमा सुनते आओगे, गीता की महिमा सुनते आओगे, भागवतम की महिमा सुनते आओगे, भक्ति के पालन विधियों का पालन की महिमा सुनते आओगे, और अभक्तों की संगत में रहोगे तो क्या सुनोगे, क्या तुम पागल हो क्या, ये भक्ति का समय है, तो भक्ति कब करनी चाहिए, जब हम आधे गूंगे बहरे लंगड़े हो जाओ, जब तुम बिल्कुल निकम्मे हो जाओ समाज में, जब वृंदावन के टिकट खरीदना, और जब तक श्री में ताकत है बॉलीवुड के टिकट खरीदो, वैसा भाव रहता है। तो इसलिए साधु और इस विषय की चर्चा कई स्थानों में है, जैसे कि भागवतम के 14 स्कंद में आप ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो, किस प्रकार ध्रुव महाराज ने बड़ी गहरी तपस्या उठाई, अंत में उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने उनसे कहा, हे ध्रुवा, मेरे कारण तुमने इतना कष्ट उठाया, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। अगर हमारे से कोई पूछे क्या वर चाहिए पूछो, हम कहेंगे अमेरिका की टिकट चाहिए, अमेरिका का दर्शन करना है। आप किसी भी अमेरिकन एम्बेसी में जाओ, बहुत लंबी लाइन होती है, ये सब अमेरिका का दर्शन करना चाहते हैं। पर जो भक्त है, तो भगवान ने पूछा, ध्रुव क्या वर चाहिए, तो ध्रुव ने क्या कहा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो उन्नत भक्तों की संगत दो, क्योंकि उन्नत भक्तों की संगत में मुझे ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसके द्वारा मैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इसी प्रकार सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज का बतलावा पढ़ते हो, भगवान ने कहा, मेरे कारण प्रहलाद तुमको इतना कष्ट भुगतना पड़ा, निर्दोष प्रहलाद का क्या दोष था, कोई दोष नहीं, पर उसके पिता चाहते नहीं थे कि प्रहलाद का आकर्षण हो उनके शत्रु के प्रति, इस कारण प्रहलाद को पहाड़ की चोटियों से फेंका, झेलू सांपों ने घेरा, हाथी चले उन पर, उन्हें सागर में फेंका गया, पर हर स्थिति में उनकी सुरक्षा किसने की, भगवान ने। कहा जाता है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, जिसको कृष्ण बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, जिसे मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। तो भगवान ने प्रहलाद से भी पूछा, मांगो क्या वर चाहे, प्रहलाद ने कहा, अगर आप वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि हमेशा भक्तों की संगत में रहूं, चैतन्य चैतन्यमृत में आप कथा पढ़ते हो, एक भक्त की जिसका नाम था खोला बेचा श्रीधर। खोला बेचा श्रीधर भौतिक दृष्टि से बहुत ही गरीब थे। उनका पेशा था केले के पत्तों के प्याले बनाना। वो जो गंगा नदी में के तट पर जाते थे वो दिया अर्पण करने के लिए वो खरीदते थे और थोड़ा फल बेचते थे। पर खोला बेचा श्रीधर का एक गुण ये था कि 24 घंटे वो महामंत्र का उच्चारण करते थे। 24 घंटे रहने के लिए उनके पास एक कमरा था जिसमें छत भी नहीं थी। आपके घर में छत है? अच्छा, खोला बेचा श्रीधर के घर में एक कमरा था, नो रूफ, कोई छत नहीं। पहनने के लिए उनके पास एक ही धोती थी जिसमें भी 11 छेक थे। आप सबके पास कितनी पतलून है? एक दिन तो ज्यादा होगी। ओके, तो और जब भी खोला बेचा श्रीधर अपनी आमदन का 50% गंगा की सेवा में लगाते थे। महाप्रभु का इतना गहरा आकर्षण था इस भक्त के प्रति कि रोज महाप्रभु उनकी दुकान में आते थे, उनसे सौदा करते थे। बोलो केले का क्या भाव है, तो भाव देते थे, 1 पैसा दर्जन। नहीं, बहुत महंगा है, आधा भाव होना चाहिए। तो खोला बेचा श्रीधर कहता था, आप मेरा सिर क्यों खाते हो रोज इधर आके? अगर सस्ता मिलता तो कुछ चले जाओ। तो महाप्रभु कहते, नहीं, तुम अच्छे सप्लायर हो, मैं क्यों तुम्हें छोड़ूं? और महाप्रभु कहते थे, एक दिन तुम्हारी महिमा, तुम कितने धनी हो सबको बताऊंगा। खोला बेचा श्रीधर कहता था, मेरे पास जो धन है आके देख लो ना। उनके पास क्या धन था? एक कमरा था छत के बिना। एक समय जब चांदकाजी ने मृदंगा तुड़वाए थे तो महाप्रभु एक बड़ा मोर्चा लेकर गए थे चांदकाजी के महल में और चांदकाजी को प्रभावित किया। 8 घंटे महाप्रभु ने लगातार कीर्तन किया 8 घंटे और उन्हें प्यास लगी। जब प्यास लगी पानी पीने के लिए किसके घर आए? खोला बेचा श्रीधर। और खोला बेचा श्रीधर के पास एक ही धोती थी और एक ही बर्तन जो भी टूटा हुआ था। ऐसी स्थिति में टूटा हुआ बर्तन था कि वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है कोई चोर भी उसे नहीं छुएगा, तो अंदाजा लगा सकते। तो महाप्रभु आए खोला बेचा श्रीधर के घर, उसके झूठे प्याले से पानी पीने लगे। खोला बेचा श्रीधर ने कहा, क्या कर रहे हो? आप तो भगवान हो, मेरे झूठे प्याले से पी रहे हो पानी। महाप्रभु ने कहा, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ, तुम्हारे प्याले से पानी पीकर। तो एक दिन महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्तों को बुलाकर सबसे पूछा, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए? खोला बेचा श्रीधर ने को महाप्रभु ने कहा, तुम्हें जो धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सबकी सुविधा मैं बना सकता हूँ। खोला बेचा श्रीधर ने कहा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हर जन्म में आपकी संगत प्राप्त कर सकूं, आप मेरी दुकान में आओ सौदा करने के लिए। तो भक्त की अगर वर चाहिए तो उसे क्या चाहिए? भक्तों की संगत का। तो उसी प्रकार हम सबको भक्तों की संगत में रहने का प्रयास करना चाहिए। कई बार जब हम भक्तों की संगत में रहते हैं तो हम नुक्स देखते हैं, गुणों को नहीं देखते। सच बात है, जब हम नए होते हैं तो सब गुणों को देखते हैं। हमें सब ये देखते हैं कि वही कुंता के प्रतिनिधि हैं। तो हम जब निकट आ जाते हैं तो कहते हैं, देखो इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, हम दोष ही देखते हैं। फिर हमारी नज़र बदल जाती है, उनकी वजह नजर दोषों को देखने लगते हैं, फिर अपराध भी करने लग जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा गुणों को देखो और गुणों को कम। तो आज ही मिल कह रहे हैं कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन किया और ये उनके हृदय अब शुद्ध बन रहा है। तो कई बार भक्त पूछते हैं, लोग कई बार क्या हमेशा पूछते हैं, हम कैसे काम वासना से बचे, कैसे इस भौतिक आकर्षण से बचे। एक ही उपाय है, क्या है? ध्यान पूर्वक हरि नाम का उच्चारण। जितने ध्यान से आप करोगे हरि नाम का उच्चारण, उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल जो है पिघलेगी। और ध्यान से हरि नाम नहीं लोगे तो भौतिक आकर्षण बढ़ते जाएगा। तो अगर आप शुद्ध बनना चाहते हो, ये उपाय। आगे क्या कहते हैं? इसलिए मैं आप पूर्ण भौतिक इंद्रिया से झूठे आकर्षण के, वो कह रहे हैं झूठे भौतिक आकर्षण के शिकार से बचूंगा। तो हरि नाम का उच्चारण यही एक उपाय है सब समस्याओं को हल करने के लिए। आगे वो कहते हैं इस कारण ये ज्ञान प्राप्त करके ये जो भावना रहती है मैं और मेरा, आई एंड माइंड, मैं और मेरा, इसे मुक्त हो रहा हूँ। मैं और मेरा, हम क्या सोचते हैं? ये मेरा है, मेरा धन है, इसे मत छुओ, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करूँगा। जो राजगुण के प्रभाव में रहता है वो क्या सोचता है? ये जो धन है ये मेरे परेशान का परिणाम है, इसका लाभ मैं उठाऊंगा। अगर कोई साधु आएगा मांगने के लिए उसे कहूँगा रास्ता पकड़ो। और जो सात्विक भाव का व्यक्ति है वो क्या सोचता है? वो सोचता है ये सब सुविधा मुझे प्राप्त हुई है भगवान की कृपा से, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। तो आज मिल क्या कह रहे हैं? एक तो कह रहे हैं हरि नाम की महिमा का गुणगान, भगवान के जो नाम है अत्यंत पवित्र है। आगे कह रहे हैं कि ये पवित्र नामों की महिमा कैसे पता लगती है साधु संगत में। आगे वो कह रहे हैं कि भगवान के नाम लेकर मैं पवित्र बन रहा हूँ। तो असली पवित्रता क्या है? हृदय की पवित्रता। हमारे प्रधानमंत्री का एक आंदोलन ये भी है, स्वच्छ भारत, याद है कि भूल गए आप? हाँ, स्वच्छ भारत, नोटों में भी लिखा है स्वच्छ भारत। तो हम लोगों को कहते हैं स्वच्छ भारत आवश्यक है, पर इससे ज़्यादा आवश्यक है स्वच्छ हृदय। हृदय स्वच्छ नहीं होगा तो बाहर की सफाई से काम थोड़ी चलेगा। सच बात है, हृदय आपका शुद्ध होगा तो बाहर की सफाई भी ज़्यादा शोभा देगी। तो आज मैं क्या कह रहे हैं? भगवान के नामों का उच्चारण लेकर वो पवित्र बने हैं, और ये जो भौतिक आकर्षण जिसके वो शिकार बन गए थे अब वो शिकार नहीं बनेंगे। तो अज्ञानता में हम अनेक प्रकार के गलत कार्य करते हैं, पर साधु संगत में आकर ये सुधर जाता है। और मैं भौतिक देह के पहचान से बच रहा हूँ। अज्ञान व्यक्ति क्या सोचता है? ये देह ही मेरा असली स्वरूप है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति मेरा लक्ष्य है। यह है भौतिकवादी की समझ। और आध्यात्मिक समवादी की समझ क्या है? कि मेरा वास्तविक स्वरूप है आत्मा। जिस प्रकार शरीर को कपड़े वस्त्र ढकते हैं, ये आत्मा को शरीर ढक रहा है। और ये शरीर जो है छह अवस्थाओं से गुजर कर जाता है, अंत में नष्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी ने कई साल पूर्व एक लेख लिखा था जिसका अंग्रेजी में नाम था लिक्विड ब्यूटी. आपको पता है ये लेख? लिक्विड ब्यूटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिक्विड ब्यूटी ज्यादा सुंदर है. तो उसमें कथा थी, एक राजकुमार एक खूबसूरत स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया था. तो उसने उससे कहा, मैं तुम्हारे विवाह करना चाहता हूँ. स्त्री ने कहा, जो खूबसूरत स्त्री थी, भौतिक देह भी खूबसूरत था और आध्यात्मिक ज्ञान था. उन्हें पता था ये शरीर का आकर्षण गलत है. तो उसने कहा, अच्छा दो हफ्ते बाद आना. तो इस सुंदर स्त्री ने दो हफ्ते के लिए जुलाब की गोलियां लेकर अपने आप को बिल्कुल पतला बदसूरत बना दिया. तो दो हफ्ते बाद जहाँ मिलना था वहाँ पहुंची. राजकुमार भी पहुंचे, पर राजकुमार साहब उन्हें पहचान नहीं सके. राजकुमार ने पूछा, यहाँ कोई खूबसूरत स्त्री को देखा था तुमने? तो उसने कहा, मैं वो ही हूँ. तो वो ही हूँ. तो उसने पूछा, तुम्हारी खूबसूरती को क्या हो गया? तो उसने बताया क्या हुआ. तो अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं ये शरीर ही हमारी असली पहचान है. भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इस विषय की चर्चा बड़े गहराई के साथ की जाती है, जिसमें भगवान ये स्थापित करते हैं आत्मा क्या है. सनातन जायते मृत्यु वा कदाचन. और भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे हम हमारे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा एक देह को त्याग कर अगला देह स्वीकार करती है. आज अज्ञानता का इतना गहरा प्रभाव है कि जब आप इस विषय की चर्चा करते हो, मूर्ख व्यक्ति क्या कहते हैं, ये सब कल्पना है, इसका क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि आत्मा है? आत्मा का प्रमाण है कुछ? क्या है प्रमाण? चेतना. तो वो ये सोचना नहीं चाहते. इसी विषय की चर्चा बाइबल में भी है. बाइबल में कहा गया है, What shall I do if thou gainest the whole world, but suffer the loss of your eternal soul? तुम सारे विश्व को प्राप्त कर लोगे, पर अपने सनातन आत्मा को खो दिया तो क्या पाया तुमने? मान लो आप बेमानी चापलूसी करके धन इकट्ठा कर लो, और नई मोटर ले लो, सुंदर पत्नी ले लो, सुंदर कोटी बना लो, पर ये सब कब तक चलेगा? हमेशा नहीं. बुढ़ावापन आएगा कि नहीं? रोग पीड़ा आएगी कि नहीं? अंध मृत्यु आएगी कि नहीं? तो ये है ज्ञानी का ज्ञान. तो अर्जुन कह रहे हैं, आप क्योंकि मैंने भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण किया है, भक्तों की संगत में रहकर मेरी अज्ञानता दूर हो गई है. ये जो भाव था मेरे में, मैं और मेरा, उसे मैं मुक्त हो गया. हमारा क्या भाव है? मैं और मेरा की बजाय सब भगवान की संपत्ति है. प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए मन में ये भाव होना चाहिए, कृष्ण भगवान हर चीज के स्वामी हैं, वो हैं असली भोक्ता, हम क्या हैं उनके सेवक. अगर ये भाव रहेगा तो आप सरलता से आध्यात्मिक उन्नति कर पाओगे. तो आजमिल कह रहे हैं, मेरा जो मन है क्या चिंतन कर रहा है? भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर रहा है. तो ये जो आजमिल के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए. भगवत में जैसे हम कह रहे थे शुरू में, भगवान उनके भक्तों की अनेक लीलाओं की चर्चा है, उनके पीछे भाव है, संदेश है। तो आज उनकी कथा आप सुन बैठे हो कई बार, पर हमारी क्या समस्या है, कलयुग में हम बुरा नहीं मानो क्या बन गए हैं, ढीर। हाँ ढीर बन गए हैं, रोज सुनते हैं एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर, पर कईयों पर असर पड़ भी जाता है। नहीं, अगर असर नहीं पड़ता तो आपका चंडीगढ़ का मंदिर इस समय खाली रहता है ना। जब प्रभुपाद जी पहली बार आए थे 75 में, जब यहाँ कोई इस्कॉन का डिवोटी नहीं था, आज हजारों भक्त हैं, आज सारे विश्व में लाखों भक्त हैं जो इस्कॉन से जुड़े हैं। तो ये सब है प्रचार के कारण। तो साधु संगत की आवश्यकता है, और हमारा प्रयास रहना चाहिए हमेशा हम भक्तों की संगत में रहें। और हमारा भाव क्या होना चाहिए भक्तों की संगत में, सेवा का भाव। जितनी सेवा करोगे उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी, और अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। आप भगवान के लिए एक रसोई बना सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, पर सब प्रकार की सेवा में सबसे प्रिय सेवा कौन सी है? हाँ कौन सी? प्रचार की सेवा। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भगवद गीता 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा क्या करता है? आप सब नहीं बोल रहे, तो मेरा क्या करता है? प्रचार। तो आप ऐसे कौन कौन हो जो प्रिय बनना चाहते हो? या माया के प्रिय बनो या भगवान के प्रिय बनो। माया के प्रिय बनोगे, बनने का प्रयास करोगे तो मार खाते जाओगे, और अगर भगवान के प्रिय बनने का प्रयास करोगे तो आनंद ही आनंद है। भक्ति के मार्ग में आनंद ही आनंद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री शास्त्र के पहले श्लोक में क्या कहते हैं, आनंद बुद्धि वर्धनम। अगर भगवान के नामों का नाम उच्चारण करोगे तो अंत में आनंद ही आनंद प्राप्त करोगे। तो भक्ति के कई साधन हैं, जिनमें एक साधन है प्रचार का। तो जैसे आप जानते हो गीता जयंती के उपलक्ष इस्कॉन के सारे भक्त सारे विश्व में, आपके हिंदुस्तान में तुम्हें तो इस समय बड़ा अच्छा मौसम है, विदेशों में रशिया जैसे देश में इस समय चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ, रशिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। और उस ठंड के वातावरण में भी भक्त क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आप सब भक्तों से ये छोटा निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ये साथ भी आप जुड़िए ग्रंथों के मैराथन की सेवा में। पिछले साल आप सब भक्तों ने मिलकर 30,000 गीता बांटी थी, हाँ या ना? आप में से कितने भक्तों ने मैराथन किया था पिछले साल? हाँ सबने नहीं। तो गीता में क्या है? ज्ञान। जिस ज्ञान की कमी है आज, आप कहोगे आजकल तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, हाँ हम गीता कैसे बांटेंगे? आपको सड़कें खाली दिखती हैं या ट्रैफिक वैसा या पहले जैसा? हाँ कि सड़कें खाली हो गई हैं, रेस्टोरेंट होटल खाली हैं कि भरे हुए हैं? हाँ तो हालांकि 5 रुपये का नोट नहीं है और 1,000 का, अगर आप गीता बांटने का प्रयास करोगे भगवान आपको सफलता देंगे। तो आप सब बड़े उत्साह से जुड़ते हो, आपसे निवेदन है कि ये सब भी जुड़िए, गीता के ज्ञान के द्वारा आप असली सुख प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा शोचति रंगं क्षति। जो व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग को स्वीकार करता है वो आनंद ही आनंद में होता है। तो आप सब जुड़ोगे ग्रंथों के मैराथन में। ये जो है ये प्रचार की संस्था है, अगर प्रभुपाद जी प्रचार नहीं करते तो आसाने विश्व में कृष्ण भक्ति पहुंचती? सब ने प्रभुपाद को कहा नहीं जी आप अमेरिका मत जाओ, वहां जाओगे इस कठिन उम्र बूढ़ी उम्र में तो शायद मर जाओगे। प्रभुपाद ने केवल में एक ही भाव था, गुरु का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी है, तो उसे सफल बनाना चाहे। तो आप सबसे निवेदन है महामंत्र का जाप कीजिए, आज जमीन की कथा में और महामंत्र की महिमा के विषय में सुनते हो। महामंत्र के जाप का लाभ हर स्थिति में है, पर अधिक लाभ प्राप्त होगा अगर आप भक्तों की संगत में रहकर महामंत्र का उच्चारण करो। तो ये प्रयास करो कि आप सदा भक्तों की संगत में रहो, महामंत्र का उच्चारण करोगे, शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों की संगत में सेवा, तो बड़ी बहुत ही जल्द आप मैं और मेरा भौतिक आकर्षण जो है उसे बच पाओगे। देवेश गुणमाई मम माया दुरत्या, भगवान गीता में कहते हैं मेरी माया बड़ी प्रभावशाली है। तो आप कहोगे जब भगवान कहते हैं बड़ी प्रभावशाली है तो हम क्या कर रहे हैं? तो भगवान आगे कहते हैं क्या मामे वामी है उदयते माया में ताम तरंदी थे, जो मेरे ही शरण में आएगा माया के प्रभाव से बच सकेगा। तो आप सबकी इच्छा है, श्रद्धा है, इसीलिए आप इधर आए हो। आप सबसे निवेदन है कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लीजिए, शास्त्र पढ़िए, गीता पढ़िए। आप में कितने भक्त हैं जो गीता को रोज पढ़ते हो? जब हम स्कूल में थे सुनते थे एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, आज सच है नहीं पता नहीं, पर अगर आप गीता रोज पढ़ोगे माया से दूर रहोगे। गीता पढ़िए, वे शिक्षा दूसरों को भी दीजिए और साधु संगत में रहने की इच्छा रखिए, फिर आप असली सुख प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं नीचे जो सत्संग कर रहा था भक्तों के साथ तो वहाँ मुझे अनेक प्रश्न पूछे थे जो मैंने कहा कि आप क्लास में पूछना, तो अगर आप काफ़ी देर हो रही है दो, कोई प्रश्न पूछना चाहता है? हाँ पूछिए
महाराज जी। दंडवत प्रणाम। अच्छा महाराज जी, मुस्लिम बच्चों को भगवत गीता देते हुए डर लगता है,
क्यों?
ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं फाड़ के फेंक ना दें, कुछ
उनको मत दो। पर कई मुसलमान पैसे देकर गीता खरीदते, कई बड़े अच्छे मुसलमान भी हैं।
मतलब इसमें डरने की जरूरत नहीं है?
नहीं मत डरो, भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर वो खुद ले रहे हैं आप जबरदस्ती उनके हाथ में,
मास में महाराज जी मास में देना पड़े तो, जैसे कोई क्लास है कहीं पर स्कूल में उसमें हाँ, में मुस्लिम भी बैठे हैं।
हाँ दीजिए, कई मुसलमान लोग पढ़ते भी हैं गीता को।
ठीक है।
कुछ दिन पहले मैं एक प्रसिद्ध मुसलमान व्यक्ति को मिला था, मैंने गीता दी, कह रहा मैं गीता जरूर पढ़ूंगा। ओके वो क्वेश्चन माता जी ने मेरे से नीचे प्रश्न पूछा था, मैंने कहा फोन में पूछना।
हरे कृष्णा महाराज। महाराज मेरा प्रश्न यही था कि माताओं में जो भगवत गीता प्रचार है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें उत्साह कैसे बढ़ाया जाए? माताओं में अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा सा हिचक होती है, अगर हम मार्केट्स में या रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड्स पे जाते हैं तो उत्साह ऐसे कैसे बढ़े आपस
में? ये जो समस्या जिसकी आप चर्चा कर रहे हो केवल माताजियों में नहीं है, पुरुषों में भी है। सच बात है, पुरुषों में भी। तो ये समस्या कलयुग की प्रजा में है। तो उपाय क्या है? अच्छी साधना रखना। रोज सुबह प्रचार में जाने से पहले एक 16 माला का जाप समाप्त करो और थोड़ा शास्त्र पढ़ो, और माला का जाप करोगे शास्त्र पढ़ोगे फिर जब प्रचार के लिए जाओगे आप उत्साहित रहोगे। ठीक है, और क्वेश्चन?
हरे कृष्ण महाराज। अरे क्वेश्चन ये था कि जामिल इतना मतलब डिग्रेडेशन होने के बाद भी हाउ इट could be possible for him to chant holy name offenselessly?
This is the power of spiritual association. If you have spiritual association of pure devotees like Vishnu Tattva, Vishnu Dutta, then even if you are very contaminated, you can get purified. Just like Prabhupada. He went to America, he was preaching to people who are virtually like animals. So Prabhupada made them Brahmins. Once somebody asked Prabhupada, Swamiji, can you do some magic? Prabhupada said, no, I can't do any magic. But what magic I've done? So the man was curious. What magic have you done? I've converted thousands of lechas into Brahmanas. So, that's the power of spiritual association. So when you distribute this Gita, you can convert the most sinful people to the path of purity. Okay. More questions?
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, हम लोग जैसे spiritual में हमारा थोड़े दिन तो इंतजार में रहता है, जोश रहता है, बहुत अच्छी chanting करते हैं, साधना करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर हो जाता है, फिर मतलब बीच बीच में ये इस तरह से होता रहता है। हम इसे किस तरह से लगातार मतलब बना के रखे हैं, इसे क्या प्रयास करें?
ये सबकी समस्या है कि केवल एक माता जी की? क्या है, कभी कभी हम माया का ज्यादा कहना मानते हैं तो उत्साह कम हो जाता है, जब माया का कहना नहीं मानते तो उत्साह रहता है। तो अगर हम सदा उत्साहित रहना चाहते हैं तो एक ही है उपाय, ध्यान पूर्वक जाप करना, शास्त्र पढ़ना, साधु संगत में रहना। और अगर आप नियमित रूप से ध्यान पूर्वक जाप करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तो सदा उत्साहित रहोगे, आप अनुभव कर सकते हो। आपका अनुभव होगा जब आप जाप करते हो सुबह ध्यान से, तो सारा दिन आध्यात्मिक उत्साह ऊंचा रहता है। मानो एक दो दिन आप नहीं जाप करो, सोते रहो, तो क्या परिणाम है? तो यही है उपाय। ओके ओके, वन और टू मोर क्वेश्चन।
हरे कृष्ण महाराज जी, अभी हमने बोला कि जो प्रूफ ऑफ स्पिरिट है वो हम बोलते हैं चेतना से है, लेकिन जब एक पेशेंट कोमा में होता है तो कोई कॉन्शियस नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे उसके अंदर स्पीच और स्पार्क नहीं है?
ये कोमा में होता है और सांस तो ले रहा है वो,
मतलब वो कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर उसमें कुछ भी चेतना नहीं है, मतलब
कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस बहुत हल्की है। कोमा में क्या, कोमा मींस बीइंग अनकॉन्शियस, बट कॉन्शियसनेस इज स्टिल देयर, वो सांस लेना बंद कर देगा। ओके, और पीछे किसका हाथ था? आप पूछे।
हरे कृष्णा महाराज जी, धन्वंत प्रणाम। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हेन विल यू कम अगेन?
Well, I haven't gone as yet. So, after I go, then I'll let you know when I'll come again. Okay. Okay. Any more questions? I'm only going to take two questions and then stop. We'll have to meet a lot of people.
Thank you, Guru Maharaj. जब हम book distribution के लिए बाहर जाते हैं तो हमारा क्या भाव होना चाहिए?
जब हम book distribution में जाते हैं, हमारा भाव ये होना चाहिए। लोग अज्ञानता में हैं, पाप के कार्यों में जुड़े हुए हैं। आपने उनका उद्धार करना है। भगवान ने आपको भेजा है उनका उद्धार करने के लिए। और अगर वो गीता पढ़ेंगे, गीता लेंगे, एक श्लोक में गीता का पढ़ेंगे, उनका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। तो मतलब जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है सागर में, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, आप उसे बचाने जा रहे हो। तो आज लोग अज्ञानता के सागर में डूब गए हैं, लगभग डूबे हुए हैं, शराब के नशे में हैं, उनको बचाना है। आप बचाओगे या नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहा। आपको किसने बचाया था? आप दूसरों को बचाओगे? नहीं तो जैसे आप बचे हो, दूसरों को भी भाग्यवान बनाओ। आप तो भाग्यवान बन गए। चंडीगढ़ के असली करोड़पति कौन है? जो मैरियट होटल का मालिक है। असली करोड़पति हैं जिनके पास हरी नाम है। तो आप हो असली रईस व्यक्ति चंडीगढ़ पंचकुला गए, जिन्होंने हरी नाम, ये है असली धन, बाकी सब तो नकली धन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ
महाराज, इसी में एक फर्दर क्लेरिफिकेशन था कि जब हम इस भाव से जाते हैं और बुक्स चली जाती हैं तो एक अहंकार का भाव आना शुरू हो जाता है।
हमने इतनी किताबें बांटी।
हाँ जी महाराज,
हम इतने पहलवान हैं। ठीक है, अहंकार का भाव आता है, आने दो, पर ग्रंथ बांटो। ये मत सोचो अहंकार का भाव आएगा तो इसलिए मैं ग्रंथ ही नहीं बांटूंगा। ये बहाना मत ढूंढो। कई बार हम बहाना ढूंढते रहते हैं, हमारे में तो पवित्रता नहीं, हम प्रचार कैसे करें? ओके, लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज, आपने लेक्चर में बताया कि जैसे हम इनिशियली आते हैं तो हम भक्ति का
क्या?
हम इनिशियली जब भक्ति में आते हैं तो हम भक्तों का मतलब गुण देखते हैं, जब कुछ दिन के बाद फिर वही भक्तों का हम मतलब क्वालिटी देखते हैं, तो एक्चुअली ऐसे होता है, तो हम क्या करना चाहिए? मतलब भक्तों के पास नहीं जाना चाहिए या कैसे बैलेंस रखना चाहिए?
ये नहीं सोचे हम भक्तों के निकट जाएंगे तो आपको देखेंगे तो दूर ही रहेंगे। नहीं, हम जब भक्तों के संग में रहे हमें उनके गुणों को देखना चाहिए, गुणों पर विचार करना चाहिए। पर ये नहीं सोचना चाहिए हम तो भक्तों के संग से दूर रहेंगे, पास जाते हैं तो अपराध हो जाता है। तो ऐसा विचार रखोगे तो फिर दूर रहोगे, भक्तों की संगत से दूर रहोगे तो माया का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा आप पर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सबके लिए प्रसाद का प्रबंध है।
थैंक you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.